ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कल महावाक्यों से जो हमें भरपूर किया, विशेष स्वमान की बात को हम लेंगे। बाबा का सृष्टि पर आना और आते ही हम बच्चों का स्वमान जगाना है, क्योंकि द्वापर युग से आत्माओं की उतरती कला जो हुई, चाहे हम स्वयं माया के वश हुए या निमित्त मनुष्य आत्माओं ने अपनी मनमत से हमें अधीन बनाया, उसके लिए उन्होंने एक ही कार्य किया, हमारे स्वमान को तोड़ने का। आप द्वापर के इतिहास को देखें, भक्ति मार्ग में शास्त्रों के अंदर हम पाते हैं कि जो माताएं बहनें समाज के अंदर चरित्र नीति मूल्यों की धारणा करने वाली है, कराने वाली है, उन माताओं बहनों को उन्होंने गिराया या अधीन बनाया केवल एक ही विधि से कि उनके स्वमान को तोड़ दिया गया। कि वह स्त्री तो दासी है, पांव की जूती के समान है, नरक का द्वार है, क्या क्या बातें जो उन्होंने कही, और ये कहकर उनको हीन भावना में ले जाया गया। और इसी प्रकार विशेष जो ब्राह्मण पंडित लोग थे, अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए उन्होंने गृहस्थियों के स्वमान को तोड़ दिया कि गृहस्थी कुछ नहीं कर सकते। भगवान को पाना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, जन्म जन्मांतर की साधना करनी पड़े। उनका उद्धार करने के लिए हम गुरुओं को निमित्त बनाया है। इस प्रकार चाहे माताएं चाहे गृहस्थी, गिरने का एक ही कारण है, स्वमान तोड़ दिया गया। कि गृहस्थी विकारों पर विजय नहीं पा सकते हैं, विकारों पर जीत पाने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़े, त्याग करना पड़े, संन्यास लेना पड़े। और इसी प्रकार की बात कहकर मानसिक रूप से उनको गिराया गया। और इसलिए उन्हों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का, सन्यासियों का धंधा अच्छा चला, क्योंकि मानसिक रूप से इनको हीन कर दिया गया। तो बाबा ने आकर हमारी चढ़ती कला करने के लिए या हमें उठाने के लिए सबसे पहला हमारे स्वमान को बाबा ने जगाए। जैसे यज्ञ के इतिहास को हम देखते हैं कि बाबा ने उन्हीं माताओं और कन्याओं को निमित्त बनाकर, जिनको लोग अबला कहते थे, बाबा ने उनके स्वमान को जगाया कि नहीं, तुम ही शक्तियां और तुमको ही निमित्त बनना है स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए। तो समाज की वो ही साधारण सामान्य कमजोर समझी जाने वाली उन्हीं बहनों ने निमित्त बनकर आज कितना कमाल करके दिखाया। क्योंकि बाबा ने शुरू में उनको वही अभ्यास कराए स्वमान जगाने। सबसे पहले आप देखिए कि देह भान को तोड़ने के लिए, क्योंकि या व्यक्ति स्वमान में होगा या देहभान में होगा, स्वमाना मैं आत्मा, और आत्मा का मान किसमें है? आत्मा के ओरिजिनल गुण स्वरूप में स्थित होने में। तो जब हम अपने असली गुण धर्मों में स्थित होते हैं तो हमारा स्वमान जगा हुआ रहता है, और अगर वो स्वमान नहीं है तो अंडरस्टूड उसके सामने देहभान होता है। और देहभान का पहला ही स्वरूप ये स्मृति कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष। तो जैसे ही स्त्रीपन का भान हमारे में डेवलप होता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो लिमिटेशंस डेवलप होती है कि मैं स्त्री हूं, मैं कोमल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकती हूं। अपने को स्त्री समझने से ये सारी लिमिटेशंस हमारे में डेवलप होती। तो बाबा ने क्या किया, जिन बहनों को समर्पित कराया उसके स्त्री भान को मिटाने के लिए बाबा ने उनको हाफ पैंट और शर्ट पहनाए। शुरू के फोटो देखे हैं ना कि बाबा हाफ पैंट और शर्ट पहनाते थे, बाबा मम्मा भी पहनते थे और एक्सरसाइज कराते थे। दूसरा, स्त्री भान डेवलप कैसे होता है? व्यक्ति चोटी बनाएगा, तिलक करेगा, कंगन पहनेगा, नाक में गले में पहनेगा, इससे उनका भान पक्का होता है कि मैं स्त्री हूं। तो बाबा ने स्त्री धान को समाप्त करने के लिए शुरू में बाबा ने क्या कहा था कि जब तक स्वराज्य नहीं मिले चोटी नहीं बनाएंगे। तो दादियां खुले बाल रख के तपस्या करती थी और कोई भी तिलक या नाक में कान में गले में हाथ में कुछ भी पहनते नहीं, ताकि वो भान हमारे में विकसित ना। एक बार एक भाई ने, अज्ञानी भाई, उसने बहुत अच्छा बताया कि आपके बाबा ने आपको क्यों नहीं तिलक करने दिया, क्यों नहीं आपको नाक में कान में गले में हाथ में क्यों नहीं पहनने दिया। तो उसने बताया कि देखो, कोई भी जानवर को, चाहे गाय भैंस बैल घोड़ा, कोई भी जानवर को वश करना हो तो क्या करते, उसके नाक से गले से रस्सियां बांधते हैं ना, और इससे वो जानवर वश में हो जाता है। तो स्त्रियों को भी अधीन बनाने के लिए क्या किया समाज ने, ये रॉयल रस्सियां भेजी, है ना। जब भी कोई पुरुष स्त्री को अपनाता है, शादी करता है, तो क्या भेजते हैं, नाक का गले का हाथ का कुछ भेजते हैं ना, अलंकार। और वो अगर ये स्वीकार करती है, माना आज से वो उनकी हो गई, अधीन हो गई। तो बाबा ने आप लोगों को इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि ये रॉयल रस्सियां है। स्त्री तो कोमल है, रस्सियां तो नहीं डाल सकते है ना, इसलिए ये कंगन हार, ये नाक में जो पहनते हैं, कान में सिर में लगाते हैं, ये सब रॉयल रस्सियां है, जिनको स्वीकार करने से मानसिक रूप से व्यक्ति अधीन हो जाता है कि आज से मैं उनकी हूँ। तो बाबा ने शुरू में ये सब निकलवा दिया ताकि ये स्त्री भान हमारा समाप्त हो जाए। और न पुरुषपन डेवलप हो और न स्त्री भान हमारे में विकसित हो, क्योंकि दोनों देहधान के स्वरूप है। तो बाबा ने हमें कंसेप्ट दिया, शुरू में कौन सी स्मृति रखते थे, क्या स्वमान रखते थे, कि मैं विष्णु चतुर्भुज कंबाइंड स्वरूप, विष्णु कॉन्सेप्ट बाबा ने दिया कि ना स्त्री को पुरुष के स्थान लेने की बात है, ना पुरुष को स्त्री का स्थान लेने की बात है, दोनों अपने आप में विशेष है, दोनों की विशेषताओं को कंबाइन करना है और वो है विष्णु चतुर्भुज स्वरूप। क्योंकि शुरू में जो बाबा ने साक्षात्कार कराया था वो तो यही था ना, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम। तो शुरू में उसी स्वमान का अभ्यास कराते थे कि हम ही ये विष्णु चतुर्भुज है, हमें ही ये बनना। माना नर और नारी की जो विशेषताएं हैं उसको अपने में कंबाइन करनी है, ना कि स्त्री पुरुष के धान से विकसित कमजोरियों को अपने में लाना। और बाबा ने हमारे कितने भी साधारण स्वरूप को देखा, जबकि 84 जन्म के अंत का बिल्कुल पति समो प्रधान गिरा हुआ स्वरूप हमारा बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने हमारे स्वमान को जगाते हुए बाबा ने भी हमें उस स्वरूप से देखा कि नहीं, ये वो ही शक्तियां हैं, ये कल्प पहले वाले वो ही विजयी रत्न है, भारत की यही कल्याणकारी माताएं और कन्याएं हैं जिनके द्वारा मुझे स्वर्ग का द्वार खोलना है। और इस प्रकार स्वमान को जगाते जगाते बाबा ने आज इतना विशाल कार्य विश्व परिवर्तन का हम निमित्तात्माओं से कराए। व्यक्तिगत रूप से अगर हम सोचे तो ये हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ये कार्य कर सके। आज अनेक आत्माओं के मन को जानना, उसके मन में प्रवेश करना और उनके मन को बदलना, ये सामान्य कार्य नहीं। अनेकों के जीवन को पावन बनाना और वो आज की कलियुगी दुनिया के बीच में रह के कार्य करना, इतना हमारे में आत्मविश्वास और इतनी शक्ति कहां से आई जो रोज रोज मुरली के द्वारा बाबा हमारे स्वमान को जगाते हैं, इससे हमारे में ये शक्ति आई। इसलिए कोई भी गिरे हुए को उठाना है, कमजोर को शक्तिशाली बनाना है, तो बाबा की मेथड को हमें अपनाना है कि हम उनके स्वमान को जगाएं। और इसलिए हर मुरली हमारे स्वमान को जगाती हुई हमें कितने ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचाती है, हमें साधारण से आज विशेष बना दिया। सिविक्स में आता है शुरू में ये पाठ, वो राजा के बेटे राजकुमार की बात कि कैसे वो राजाई घराने से अलग हो जाता है और जंगल में पशुओं के साथ पलता है, तो वो पशु जैसा ही हो जाता है, जानवर जैसे लंबे नाखून बाल और सिर झुकाकर चलना, और आखिर खोजते खोजते जब उसको जानवरों के झुंड में पाया तो उस राजकुमार को राजमहल में लाकर रोज उनको ये समझाया गया, ये ट्रेनिंग दी गई कि तुम राजकुमार इतनी बड़ी राजाई का मालिक हो, तुम राजा के बेटे हो, तुम सामान्य नहीं हो। और ये कहकर उसके अंदर राजवी संस्कारों को विकसित किया। तो ऐसे ही हमारा भी इतिहास है ना, कि जब हम बच्चे अपने असली स्वमान को, शान को, स्थान को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर ये देहभान के विषयी संस्कार विकसित हो जाते। अब बाबा ने जब हमें इस कलियुगी जंगल से खोज निकाला है तो बाबा हमें रोज ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप ये कलियुगी तमो प्रधान आसुरी विकारी पुजारी भिखारी मनुष्य नहीं है। रोज बाबा हमें ऊंची स्मृति दिलाते हैं कि आप आत्मा हैं, ईश्वरीय संतान हैं, भुवनहार देवता है, कल्प पहले के विजयी रतन है, विश्व कल्याण के लिए निमित्त है। ऐसे ऐसे स्वमान की बातें और श्रेष्ठ स्मृति की बातें देकर बाबा हमें पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम उसको कहते हैं। वो हमारे में तभी आ सकता है जब हमारे पास अपनी रियल आइडेंटिटी, हमारे पास हमारा सही परिचय। जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, तब तक हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान जाग नहीं सकता। तो हमारा पहला लेसन ही हमारे सही परिचय का है कि हम कौन हैं। ये बार बार अपने आप को रियलाइज करना है। और उससे संबंध में बाबा कितनी वैरायटी पॉइंट्स हमें देते हैं कि केवल हम देह से अलग चैतन्य शक्ति आत्मा नहीं है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा, तो कौन सी। हर घड़ी अगर हमें ये रियलाइजेशन रहेगी कि सचमुच मैं कौन हूं, जैसे लौकिक दुनिया में खुद को देह समझते हैं, देह भान में रहते हैं, इसलिए दैहिक जाति कुल संबंध शिक्षा पद प्रतिष्ठा के आधार पर उनको देह अभिमान रहता है, जिसको वो भी स्वमान कहते। आज दुनिया में भी लोग कहेंगे कि भी हमें भी तो कोई स्वमान है, ऐसे थोड़ी अपमानित तो होके हम जाएंगे। पर उनका स्वमान कौन सा है, लौकिक देह के जाति कुल धर्म भाषा नेशनलिटी एजुकेशन रिलेशन पोजीशन पोस्ट, इसके आधार पर उनका स्वमान, जो वास्तव में देह अभिमान है। लेकिन जिसको ये लौकिक प्रकार का देह भान, देह अभिमान या स्वमान वो कहते हैं, वो भी जिनको होता है, उनके अंदर भी स्वाभाविक रूप से कुछ धारणाएं आ जाती हैं। जैसे कोई सोचता है कि भाई हम राजपूत हैं, बस ये सोचने से उनके अंदर वो शौर्य और कुछ अपने अंदर नशा आ जाता है। हम इस कुल के हैं, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम बड़े घराने के हैं, हम ऐसे रास्ते में खड़े होके नहीं खा सकते हैं, मेरे पिताजी इतनी ऊंची पोस्ट पोजीशन वाले हैं, मैं उस स्थान पर नहीं जा सकता, है ना। तो लौकिक रूप से भी जिनको अपने देह के जाति धर्म भाषा कुल रिलेशन एजुकेशन आदि का सेंस रहता है, अवेयरनेस रहती है, उसके अंदर भी उस प्रकार की चीज आती है। तो अब तो हमें सही स्वमान बाबा ने दिया है, है ना? हमें अपने आप का सही परिचय मिला। तो जब खुद का सही परिचय मिलता है, से हमारे अंदर खुद को खुद के लिए ही रिस्पेक्ट उत्पन्न होता है। आपको अपने लिए ही रिस्पेक्ट होगा कि मैं कोई सामान्य नहीं हूं, हम भगवान के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इतनी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के हम स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमें सत्य ज्ञान मिला है और वो सत्य ज्ञान देने के लिए हम निमित्त है, विश्व को सही राह दिखाने वाले हम हैं। जब हमें अपना वास्तविक परिचय बुद्धि में रहता है तो आप अनुभव करके देखिए कि हमें अपने लिए ही रिस्पेक्ट होगा, अपने आप में गौरव उत्पन्न हो, हमारी अपनी हीन भावनाएं समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही हीन भावना समाप्त होगी, साधारणता और कमजोरी दोनों हमारे से जाएगी। आज हम जहां तहां बैठ जाते हैं, जहां तहां खा लेते हैं, जहां तहां चीजें ले लेते हैं, ये साधारणता क्यों आती है? क्योंकि हमारी स्मृति में हमारा साधारण स्वरूप है। लेकिन बाबा ने हमें जैसे ही साधारण शरीर के भान से न्यारा किया, आत्मा की ऊंची धारणाओं में स्थित किया, तो खुद को खुद के लिए ही गौरव महसूस होगा। देखो, जिसको कहते ना भाई डिग्निटी ऑफ माय एग्जिस्टेंस, मुझे अपने अस्तित्व का गौरव होना चाहिए कि मैं इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आया हूँ, खाने पीने सोने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा जीवन रूटीन नहीं है, मैं विशेष पार्ट धारी भगवान से कनेक्टेड। जब ये बातें आपकी स्मृति में रहेगी तो रॉयलिटी तो नेचुरली हमारे अंदर धारण हो जाए, हीन भावनाएं समाप्त, कमजोरियां समाप्त, साधारणता समाप्त तो हो जाएगी, तो अपने आप हमारा उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना सोना सोचना सब कुछ श्रेष्ठ बन जाएगा। तब बाबा ने कहा कल कि दो चीज है, एक है स्वमान में निश्चय, वो है नॉलेजफुल बनना, क्योंकि नॉलेज तो है ना, कौन कौन से स्वमान बाबा ने दिए, हर एक अपनी दिनचर्या भी बनाते हैं, प्रोग्राम भी सेट करते हैं कि भी 9 से 10 इस स्वमान में रहेंगे, 10 से 11 इस स्वमान में रहेंगे, 11 से 12 इस स्वमान में रहेंगे, लेकिन वो स्वमान टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि स्वमान के अनुरूप मेरी मनोस्थिति नहीं है, मेरी चलन नहीं है, मेरी दिनचर्या नहीं है, मेरी धारणाएं नहीं, कर्म साधारण है, तो स्मृति श्रेष्ठ कहां से रही? इसलिए श्रेष्ठ स्मृति स्वमान का नशा, ये अंदर की पावरफुल स्थिति का प्रमाण है। इसलिए तब तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य और लक्षण समान बनाओ। स्वमान ऊंचे लेते हैं लेकिन कर्म उसके अनुरूप हम नहीं करते हैं, इसलिए स्थिति नहीं बनती, नशा नहीं टिकता है। और नशा नहीं है तो मेहनत का अनुभव होगा। आप देखो, जिस बात का नशा धुन लगी होगी वो काम करना आसान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ नशा है तो पुरुषार्थ सहज लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई निंद्रा की परसेंटेज ज्यादा होगी तो स्वप्न याद नहीं रहते, नींद गहरी नहीं होगी तो स्वप्न 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 ही लगते रहे। ऐसे नशे की परसेंटेज ज्यादा होगी तो मेहनत, विघ्न, तूफान, इसका अनुभव नहीं होगा। नशा नहीं है इसलिए ये सारी बातें हमें माइंड होती। तो मुझे हर घड़ी, चाहे मैं अकेली हूं कहीं भी, क्यों बाबा के बच्चे, कईयों का अनुभव ऐसा है ना कि भाई हम अकेले हैं तो ढीले हो जाते हैं पुरुषार्थ में, धारणा में ढीले हो जाएंगे, सेवा के उमंग में कमजोर हो जाएंगे। बहुत बड़ा संगठन है तो उमंग रहता है, शक्ति रहती, लेकिन जिनको खुद की रियलाइजेशन है, जिनका अपना स्वमान हर घड़ी जगा हुआ है, वो अकेला होगा, कहीं भी होगा, ब्राह्मणों के बीच में है या नहीं, लेकिन उनकी धारणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं ब्राह्मण संगठन में है तो हम नियम मर्यादा में ठीक है, और कोई नहीं देख रहा है तो हमारे में गड़बड़ शुरू हो जाए, भाई कोई देख नहीं रहा है, किसको पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं गलत कर लूं, गलत खा लूं, नियम मर्यादा के विरुद्ध चल लूं, इसका अर्थ ये है कि मेरा अपना कॉन्शियस इतना जागृत नहीं है। कोई नहीं देख रहा है लेकिन मेरा अपना कॉन्शियस तो देख रहा है ना, लेकिन मेरा कॉन्शियस जगा हुआ है तो मुझे कोई देखे या ना देखे, मैं ब्राह्मण परिवार में हूं या नहीं हूं, मैं घर में हूं या सेंटर में हूं, मैं कहीं भी रहूंगी, मेरे धारणा में, मेरे आहार विहार व्यवहार में, मेरी दृष्टि वृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी रियलाइजेशन स्पष्ट है कि मैं कौन हूँ, मैं अब किसकी बनी हूँ और उसने मुझे किस कार्य के लिए अब निमित्त बनाया। तो अगर हमारा स्वमान जगा हुआ होगा तो हमारा अंदर और बाहर एक होगा, समानता आने लगेगी, जो बाबा ने कहा ना लक्ष्य और लक्षण में समानता, हमारे अपने अंदर गड़बड़ नहीं आएगी, हम ढीले नहीं होंगे, क्योंकि हमारी अपनी शक्ति है। और कितनी अच्छी बात बाबा ने कल बताई कि ये परमात्मा स्वमान धारी है, कोई मनुष्य के दिए हुए स्वमान नहीं है ये। कई बार भाई बहने क्या सोचते हैं पता है, ऐसे ही बाबा चढ़ाने के लिए कहता है, ऐसे ही कहने की बाबा को क्या जरूरत है, पहले ये तो सोचो। ऐसे ही कहने की बाबा को जरूरत क्या है, और बाबा की तुलना में हम कौन हैं जिनको चढ़ाने की जरूरत है बाबा को। तो बाबा ऐसे ही नहीं कहते हैं, बाबा कल्याण के भाव से हमें ऊंचे चढ़ाने के लक्ष्य से रियल बातें हमें बताते, ऐसे ही नहीं कहते हमें अच्छा लगाने के लिए। हमें अच्छा लगाना बाबा को क्या जरूरत है, बाबा तो बहुत सुप्रीम अथॉरिटी। आज मैं सामान्य स्थिति वाली हूँ तो मैं मेरे से सुपीरियर अथॉरिटी को मैं चढ़ाने के लिए चार बात कहूंगी, क्योंकि उनको खुश रखना मेरे लिए जरूरी है। लेकिन बाबा तो हमारे से ऊंचा है, उनको क्या आवश्यकता है। तो एक तो कभी ये नहीं सोचो कि बाबा ऐसे ही कहते, इसलिए स्वीकार नहीं होता है अंदर से। दूसरी बात, कई बार भाई बहने ये सोचते हैं कि बाबा तो कहते हैं पर हमें पता है ना हमारी परिस्थिति क्या है। हम गृहस्थ में रहते हैं, हम संसार में रहते हैं, बाबा तो जन्म मरण से न्यारा है, उनको क्या पता, हम इसमें आते हैं ना। लेकिन नहीं, मैं हमेशा तीन बातें सोचती हूँ कि बाबा हमें जो कुछ कहते हैं, एक तो सत्य है इसलिए कहते हैं, झूठा झूठा बाबा क्यों कहेगा जबकि बाबा है ही सत्य। तो ये रियलिटी है इसलिए बाबा हमें कहते हैं। हम तो अपने वर्तमान को देख के सोच रहे हैं ना, बाबा तो हमारे आदि मध्यांत को देख के कह रहे हैं ना। दूसरी बात कि बाबा वही कहेगा जो पॉसिबल है करना, जो करना शक्य ही ना हो वो बात बाबा क्यों कहेगा, जो बाबा का कहा हुआ व्यर्थ जाए। बाबा वही कहेगा ना जो पॉसिबल है, इसलिए हम अपने आप में ये निश्चय रखे, बाबा में निश्चय रखे कि बाबा ने कहा है माना ये हो सकता है, इसलिए बाबा ने कहा। बाबा को भी तो पता है ना कि हम कलयुग में रहते, अंतिम जन्म की तमो प्रधान आत्माएं, ये बाबा भी तो जानते हैं ना। फिर भी बाबा कहते हैं, मीन्स करना पॉसिबल है तब तो बाबा कहते हैं। और तीसरी बात कि वो कल्याणकारी बात है इसलिए वो कहते, बिन जरूरी अनावश्यक ऐसी ही बात बाबा क्यों करेगी। तो बाबा ने जो जो टाइटल दिए हैं वो हमें दिल से लगे, लॉजिकली स्वीकार हो। कई बार हम खुद ही लॉजिकली कन्विंस नहीं होते हैं, तो शांति से बैठ के एक एक टाइटल पर, एक एक स्वमान पर लॉजिकली सोचो कि ये तर्क संगत बात है, ऐसे ही कही हुई बात नहीं है। तो जब आप लॉजिकली कन्विंस होंगे ना, तब वो स्वमान प्रैक्टिकल में आएगा। आज कोई इंसान हमें कोई टाइटल दे देता है तो हम राम कहते मेरे को अंदर से लग गया, उसने ऐसे कहा ना, सबके बीच में मेरे को बोला कि तुम बुद्धू हो। क्या समझता है वो, मेरे को बुद्धू का करके सारा दिन वही बात चिंतन में आती रहती है। उसने मेरे को मूर्ख कहा, इंसान का दिया हुआ टाइटल एकदम स्वीकार हो जाता है, असर हो जाता है, मन भारी हो जाता है, चिंतन वही चलता है, मुंह भी चढ़ जाता है, मन स्वरूप भी बन जाता है। और बाबा इतने टाइटल देते हैं और हमारे चेहरे पर कोई असर ही नहीं आती। हम मुरली सुनते हैं, बाबा इतना टाइटल देते हैं और हम निर्विकार, चेहरे पर कोई भाव ही नहीं। तो बाबा ने ये थोड़ी कहा है कि बाबा जब कुछ कहे तो निर्लेप होके बैठो, मनुष्य कहे तो मन भीग जाए, मन उसके प्रभाव में आ जाए, और बाबा कहे वहां मन एकदम निर्लेप होके बैठा है, इसलिए चेहरा भी निर्विकार, कोई खुशी नहीं, कोई असर नहीं। बाबा कहता है मेरी याद में बैठो तो चेहरा खिल जाना चाहिए। एक कन्या पति को याद करती है तो चेहरा खिल जाता है, तुम्हारा चेहरा योग में खिल जाना चाहिए, और यहाँ योग में चेहरा डल हो जाता है, नींद आती है, उबासी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दिल से लगा नहीं, अंदर से स्वीकार हुआ नहीं। इसलिए केवल सुनना नहीं है बाबा के महावाक्य, थोड़ी और स्टडी जरूरी है कि हम मुरली को फिर व्यक्तिगत खुद भी पढ़ें, एक एक बात को हम समझें और अपने को लगाएं। फिर आप देखिए संसार का कोई प्रलोभन हमें खींच नहीं सके। कल कहा ना बाबा ने, दुनिया की कोई की ताकत नहीं है जो तुम्हारे स्वमान से उतार सके तुम, और ये रियलिटी है। ना कोई वैभव हमें खींचेगा, ना कोई व्यक्ति हमें प्रभावित करेगी, चाहे वो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में हो या बाहर हो। नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे पर कभी नहीं आए, क्योंकि जब मैं स्वमान में रहती हूँ तो मेरा अपना विवेक स्पष्ट रहता है कि मैं कौन हूँ और उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मुझे स्पष्ट रहेगा। और जब मेरा विवेक स्पष्ट रहेगा तो ना मुझे किसी से पूछने की दरकार होगी, ना किसी के मत पर चलने की जरूरत होगी। क्यों हम दूसरों से पूछते रहते, एक छोटी छोटी बात में भी हम पूछते रहते, अच्छा तुम मधु बनाएगा तो मैं मधु बनाती हूँ, ये नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगी, आप सेवा में चलेंगे तो मैं भी चलती, कितने आधारित है हम, क्योंकि हमारी अपनी मति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को स्पष्ट नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जो कहता है ना कि राजा अपने विल पावर से चलेगी, प्रजा जो है वो फॉलो करेगी, देख देख के चलेगी। तो जब हमारा स्वमान जागृत होगा, जिसको बाबा ने कहा ना नशा, पावरफुल होंगे आप उसमें, तो आप मूढ़मती नहीं होंगे, आपका विवेक बहुत स्पष्ट होगा, आप मूंझेंगे नहीं, किससे राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम बिल्कुल श्रीमत पर अपने को चला सकेंगे, हमें अपनी वैल्यू होगी। अपने आप की वैल्यू महसूस होगी। अपना सही परिचय, सही परिचय से सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान जगेगा। स्वमान जगने से हमें अपने आप की वैल्यू होगी। तो नेचुरली हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी वेस्ट नहीं करेंगे। और जब आपको अपनी वैल्यू होगी तो अंडरस्टूड, आप दूसरे को भी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे की भी वैल्यू आपको होगी। तो जो स्वमान में होगा वो कभी भी दूसरे के साथ हल्का व्यवहार नहीं करेगा, दूसरे का इंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि उससे उस आत्मा की वैल्यू होगी। जब मैं श्रेष्ठ स्मृति में हूं तो उसी स्मृति से मैं उस आत्मा को देखूंगी ना, तो मुझे उस आत्मा की वैल्यू होगी कि ये आत्माएं साधारण नहीं है। कल एक चीज में पढ़ रही थी, उसमें उसने सोचा, मुझे बड़ा इतना अच्छा लगा कि इंसान भी कितना ऊंचा सोचते हैं। उसने लिखा था कि मनुष्य 6-8 घंटा सोते हैं और वो 6-8 घंटे निंद्रा अवस्था में स्वप्न देखते हैं। तो अगर वो स्वप्न ऐसे ही होते तो प्रकृति की रचना में ये 6-8 घंटा ऐसे ही वेस्ट करना नहीं होता। जरूर इसके पीछे कोई रचनात्मकता है, उसकी कोई पीछे उद्देश्य है। हम तो जागृत अवस्था का सोचते हैं कि हमारा व्यर्थ ना हो। वो ये सोच रहा था कि संसार की रचना में ये निंद्रा अवस्था में स्वप्न देखना वो ऐसे ही नहीं हो सकता है, उसके पीछे जरूर इस रचना का कोई पर्पस होगा। तो जब हमें खुद को वैल्यू होगी तो हम दूसरे की भी वैल्यू करेंगे, और अपने आप को वैल्यूएबल समझेंगे तो नेचुरली हम श्रीमत को प्रैक्टिकल करने में हमेशा अपनी शक्ति से आगे रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। तो स्वमान और सम्मान देना, इन दोनों का भी आपस में रिलेशन है। स्वमान में स्थित होना माना खुद ही खुद को रिस्पेक्ट देना, और जब हम उस स्थिति में होंगे तो अन्य सभी को भी हम उसी ऊंची दृष्टि से देखेंगे और व्यवहार करें। ओम शांति।